Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also take calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers, or if you're calling us from your mobile phone. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Manoj Pathak.
नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज सोमवार है और आज के दिन आप सभी श्रोताओं को हम आमंत्रित करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू मनोज. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन फ्लैट नोट. सेंसेक्स एड्स ओवर 20 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 24,365. इंडियन साउथ कोरिया एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $50 billion बाय 2030. Both nations to expand cooperation in sectors including AI, energy, semiconductors and emerging technologies. And global crude oil prices climb around 5%.
घरेलू शेयर बाजार में कारोबार तो उतार चढ़ाव के बीच हुआ, लेकिन बिना किसी खास परिवर्तन के बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 20 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,365 पर बंद हुआ. भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक आपसी द्विपक्षीय कारोबार $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा. दोनों देशों ने एआई, एनर्जी, सेमीकंडक्टर और उभरती हुई तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगभग 5% बढ़े.
And before we may move on to the main news, an important announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए अब शुरुआत करते हैं कारोबारी खबरों का सिलसिला. सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, लेकिन उससे भी पहले आप सभी श्रोता जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत. लेकिन आप ध्यान के साथ और धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर. पहले हम शेयर बाजार लिए चलेंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे. घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. लगभग फ्लैट स्टोन बाजार में देखने को मिला. हालांकि कारोबार उतार चढ़ाव के बीच हुआ, प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त में ही आखिरकार रहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 27 अंक बढ़त के साथ 78,520 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक बढ़त के साथ 24,365 दर्ज हुआ.
Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The Sensex and the Nifty both settled with marginal gains after a volatile trading session. The BSE Sensex rose 27 points to close at 78,520. The NSE Nifty added 11 points to settle at 24,365.
Sensex pack पर ध्यान दें तो 30 में से 18 कंपनियों के शेयर आज घाटे में रहे. सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनी रही लार्सन एंड टुब्रो तथा बीईएल. दोनों के शेयर 1.1% घाटे के साथ बंद हुए. एचसीएल टेक के शेयरों में लगभग 1% की कमी देखने को मिली. कोटक बैंक के शेयर लगभग 0.9% नीचे आकर बंद हुए. उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर रही ट्रेंट, जिसके शेयरों में 3.3% से अधिक की तेजी आई. भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 2.5% से अधिक बढ़कर बंद हुए. एशियन पेंट्स के शेयरों में 2.1% से अधिक की वृद्धि हुई.
Among the sectoral indices at the BSE, 12 out of 25 sectors registered an upward move, with industrials remaining flat. Among the top gainers, power gained over 1.2%, utilities jumped almost 0.9%, and PSU banks advanced 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,548 companies declined, shares of 1,840 companies advanced, and shares of 190 companies remained unchanged. And now let's take the first call of the program. Today, Piyusha is calling us from Mumbai. Piyusha, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
लगता है आपने धैर्य छोड़ दिया और हमसे दूर हो गए, लेकिन हम आपका स्वागत फिर भी करते हैं. हमारे साथ दिल्ली से रजत हैं फोन लाइन पर. आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछे अपना.
Manoj, it seems like both our listeners, you know, for whatever reasons, technical reasons, they seem to have, you know, we seem to have lost
contact. यानी हमारा संपर्क छूट जा रहा है. कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे. श्रोता, आप भी अपनी ओर से प्रयास करते रहे. आप सबों का कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम आगे बढ़ें उससे पहले रुपए की खबर आपको देना चाहेंगे. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 19 पैसे कमजोर हुआ. 93.12 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की अन्य प्रमुख 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक 98.19 पर चल रहा था. हम चलते हैं जयपुर. जितेंद्र जी हमारे साथ लाइन पर हैं. जितेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जितेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है. लगता है कहीं कुछ रोड़ा बीच में अटका हुआ है. हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे. आप श्रोता हमारा साथ दीजिए और हम तक पहुंचने की कोशिश करते रहें. हमारे नंबर हैं 2331444 2331 0481 2371 7106. दीपशिखा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. कुल मिलाकर बाजार का मूड क्या दिख रहा है आपको? आज के कारोबार को ध्यान में रखकर हमें बताएं.
मनोज जी, बाजार भी जो है एक जो उतार चढ़ाव दुनिया देख रही है उस हिसाब से उससे ग्रसित है और वही व्यवहार वो दिखा रहा है. अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है कि सीज फायर है, लड़ाई रुकेगी नहीं रुकेगी, शिप्स पे अटैक हो रहा है, लड़ाई क्या और बढ़ने वाली है. उसी बीच में लगता है कि एक आशा बनती है कि शायद अच्छा बातचीत हो रही है दोनों अमेरिका और ईरान की तरफ से, लोग शायद मिलेंगे पाकिस्तान में. तो ये पूरा जो मैं कहूंगी कि एक बहुत ही वो स्किजोफ्रेनिक टाइप जो है वो माहौल बना हुआ है. तय कर पाना मुश्किल है कि किस दिशा में जाएं. तो वही अनिश्चितताओं के दौर में थोड़ा बीच में प्रॉफिट बुकिंग होता है, लगता है कि लोग आ रहे हैं और थोड़ी खरीदारी होने लगती है बाजार में. लगता है कि अगर सीज फायर हो रहा है, लड़ाई बंद हो रही है, तो उम्मीद बन जाती है. तो आज का जो बाजार है वही उतार चढ़ाव जो है मुझे लगता है वो दर्शा रहा है.
जी, आइए हम चलते हैं जयपुर एक बार फिर से प्रयास करते हैं. जितेंद्र जी से जी, जितेंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत.
अच्छा, हाँ हाँ, थैंक यू. अच्छा मैडम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मान लीजिए 6.5 लाख का कोई फ्लैट है, 6 लाख लोन मिल रहा है, और क्या नाम है, उसमें रजिस्ट्री लग जाएगा और बैंक का प्रोसेसिंग फीस, तो लगभग 7.5 लाख का पड़ जाएगा, और 6 लाख का जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो 6,000 रुपया लगभग मंथली आएगा, तो ये बेटर है या आदमी अगर म्यूचुअल फंड में ही 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करे तो वो बेटर, कौन सा बेटर ठीक रहेगा, या निफ्टी 50 में करे?
देखिए जितेंद्र जी, आप जो हैं अपना पोर्टफोलियो पहले तो देखें कि उसमें क्या मिसिंग है और उस हिसाब से आप निवेश करें। रियल एस्टेट जो है उसमें आपका एक बंधा हुआ एसेट है वो तैयार होता है, जो कि बहुत लिक्विड नहीं होता है, और अगर जरूरत पड़े तो कई बार उसको बेचने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, टैक्सेशन का इशू आ जाता है, कैपिटल गेन्स है। म्यूचुअल फंड में उस तरह की दिक्कतें नहीं है, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका जो निवेश का और निवेश का जो होराइजन है कितना समय का है वो देख करके फिर आप उस पर उचित निर्णय लीजिए।
द नेक्स्ट कॉल इज फ्रॉम दिल्ली, रजत हैज जॉइंड अस देयर। रजत, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हां जी, आई एम ऑडिबल?
जी जी प्लीज।
अच्छा, मेरा सवाल था कि जो गैप डाउन और गैप अप होता है वो यूजुअली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। 5-5% मार्केट या तो ऊपर चली जाती है या नीचे, और यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि खरीद होती है, बेचना होता है, तब ये जाता है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भी मार्केट इतनी रिएक्ट करती है या इसके पीछे मतलब खरीद भी इंक्लूडेड होती है?
रजत जी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से तो मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है, जो सूचना और खबर रहती है, उस हिसाब से लोग निवेश का अपना निर्णय लेते हैं, और जो खरीदारी बाजार में होती है या बिकवाली होती है उस वजह से बाजार ऊपर नीचे जाता है। तो ये नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई और इन्फॉर्मेशन की वजह से बाजार जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है।
यू नो, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी, दीपशिखा, आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू, यू नो, वी वर डिस्कसिंग द मार्केट्स अर्लियर ऑन। डिस्पाइट दिस वॉलेटिलिटी दैट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स, देयर इज वन सेक्टर विच इज डूइंग pretty well, and that is the power sector. You know, today also we saw that the power sector gained about over more than 1.2%. So what do you think are the factors beyond before for this?
Anubha, if you look at the summer season traditionally and historically, power demand goes up quite a bit during the summer. You know, the peak demand rarely rises. So companies also GenCos also they work towards generation. There's a lot of emphasis on meeting the customer demand, so definitely that is sort of showing in the sentiment in the stocks. And plus there is a lot of emphasis towards power sector in terms of policy,
right?
So I think in some ways people are looking at power sector for a long term horizon as well.
Right.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है। हांगकांग का हेंगसिंग और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों लगभग 0.8% बढ़त के साथ बंद हुए। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.6% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.1% से अधिक की तेजी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने नए ऋणों के लिए मानक एक वर्षीय ऋण प्राइम रेट एलपीआर को बिना किसी परिवर्तन के 3% पर बनाए रखने का ऐलान किया। 5 वर्षीय एलपीआर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह दर 3.5% पर बनी रहेगी। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ चलते नजर आ रहे थे। अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.3% घाटे में था। फ्रांस के कैक 40 में 0.8% से अधिक की गिरावट थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 भी 0.6% से नीचे कारोबार कर रहा था। बहुत संक्षिप्त में यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें और शेयर बाजार की चाल देखें तो वो भी जो यानी पहली यानी घरेलू शेयर बाजार में आपने चर्चा की वही वहां वही आशंका कि कब क्या होगा वो लेकर बाजार आशंकित है।
बिल्कुल वो आशंका। दूसरा चीज है कि आप देख रहे हैं कि सारे कमोडिटीज के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो है उन कमोडिटीज के आयात पर निर्भर हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ग्रोथ पर असर पड़ेगा, तो वही जो है वो बाजार में दिख रहा है। अनिश्चितता तो बराबर बनी हुई है।
आइए चले मुंबई। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुभाष। सुभाष जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
थैंक यू सर
जी।
एक्सपर्ट मैडम से एक क्वेश्चन है।
आप पहले आपसे हाँ आपसे आग्रह आग्रह सुभाष जी, सुभाष जी अपने रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वो आवाज हम तक पहुंच रही है तेज।
हेलो
जी
जी
अब बिल्कुल बहुत बढ़िया।
सम शेयर्स आर गोइंग टू बी एडेड टू माय डीमैट अकाउंट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम माय फादर अकॉर्डिंग टू हिज सक्सेशन सर्टिफिकेट। इज नो मोर नो, सो हाउ इट विल बी ट्रीटेड इन माय इनकम टैक्स रिटर्न।
जी
जी
इनकी मदर से ट्रांसमिशन के थ्रू इनके पास शेयर्स आएंगे। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ इट्स गोइंग टू बी ट्रीटेड इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स।
तो जब आप उसको बेचेंगे और आपकी उसमें आप जो भी गेन होता है वो आपकी आय में जुड़ेगा, कैपिटल गेन की तरह ही वो ट्रीट होगा।
जी
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने आज खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग और औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज के ढांचे को उन्नत बनाने संबंधी वार्ता फिर से शुरू करने पर संयुक्त घोषणा पत्र का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत के बाद ये समझौते किए गए। अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया आपस में मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी में साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया भरोसेमंद साझेदारी को भविष्योन्मुखी साझेदारी में बदल रहे हैं।
भारत और कोरिया का बायलेटरल ट्रेड आज 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं।
Addressing the opening session of India-Korea Business Forum in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the visit of President of South Korea Lee Jae-myung as a defining step towards launching a new chapter in the relationship. He informed that both nations have agreed to upgrade their comprehensive economic partnership by addressing key non-tariff barriers, simplifying business processes and creating opportunities for a more balanced economic relationship. India and South Korea have emphasized and enhancing economic cooperation during the talks between Prime Minister Narendra Modi and visiting President of South Korea Lee Jae-myung. Briefing the media after the bilateral talks in New Delhi today, Secretary East in the Ministry of External Affairs, P. Kumaran, said that the two leaders reviewed the overall progress in India-Korea Special Strategic Partnership. He said that both the leaders discussed avenues to further expand cooperation in trade, financial services, shipbuilding, AI, energy, semiconductors, critical and emerging technologies, defense and security, as well as people-to-people cultural exchanges. Deepshikha, we already have a caller with us from... I wanted to ask you a question about this, but let's first take the next caller. Ravi is calling us from Haryana.
Sure, sure.
Ravi, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें।
नमस्कार मैम।
जी सवाल पूछिए।
मैम ये जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कोई अगर किसान रजिस्टर नहीं कर पाया तो उसके लिए क्या कौन क्या कर सकते हैं हम?
आपका जो पंचायत क्षेत्र है आपको वहां पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तभी आपको सम्मान निधि मिलेगी। अगर आपका डेटा सरकार के पास नहीं है तो वो किस तरह से ट्रांसफर कर पाएंगे?
जी, सो आई वांट टू गेट बैक टू यू अबाउट द इंडिया कोरिया यू नो साउथ कोरिया दिस पार्टनरशिप बिजनेस फोरम एंड व्हाट आर द एरियाज इन विच इंडिया कैन बेनिफिट यू नो फ्रॉम these from South Korea, which are, because there are a lot of areas that have been mentioned, you know, that where the two countries are going to expand their cooperation. So which are the main areas where we can, you know, benefit from their expertise, and which are the areas where India, South Korea can, you know, look to us?
Anubhav, if you actually see India and South Korea, we already have a trade agreement, and Commerce Minister has spoken about upgrading that agreement.
Yes.
And also if you see a number of Korean companies are present in India. They are not just present, but they are manufacturing.
Yes.
There is a very large investment made by Korean companies. So they are familiar with Indian terrain. Definitely, they can bring in a lot of investment. They can also bring in a lot of new technologies, like we have spoken about, AI, semiconductor, critical emerging technologies that India is looking at. So both the countries offer, this relationship has a huge potential to grow, definitely, and which is why, you know, both Prime Minister and Commerce Minister both have emphasized on the potential of this industry and making it more robust going forward, bringing balance in it by, you know, addressing the non-tariff barriers and so on and so forth.
Right, let's move on to the next story. The growth of the combined index of 8 core industries, ICI, contracted in March this year, falling to 0.4% on an annual basis. It had recorded a growth of 2.8% in February. According to data released by the Commerce and Industry Ministry, fertilizer production slumped by 24.6%, crude oil production declined by 5.7%, coal production fell by 4%, and electricity generation declined by 0.5% last month on an annual basis. However, natural gas production increased by 6.4%, cement production grew by 4%, steel production increased by 2.2%, while petroleum refinery products production increased marginally by 0.1%. The 8 core industries comprise over 40% of the weight of items included in the index of industrial production.
यहाँ पर टिप्पणी आपकी हम समझना चाहेंगे, ये विकास के आंकड़े क्या जता रहे, क्या दर्शा रहे हमारी प्रगति के बारे में, क्या संदेश दे रहे?
मनोज जी, देखिए, ये फर्स्ट मैं कहूंगी पहला इम्पैक्ट जो है, जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट था, उसका असर यहां दिखाई दे रहा है.
जी, जी.
क्योंकि अगर आप देखें कोर सेक्टर के जो आंकड़े आए हैं, उसमें कौन से क्षेत्र जो है जो इम्पैक्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, उसके प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आया है. तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट राउंड अफेक्ट है इस क्राइसिस का, वो थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा, दिखना शुरू हुआ है. बट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफी मजबूत स्थिति में रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले, तो उम्मीद है कि ये जो संकट है, इस संकट से भी आगे बढ़ जाएगी.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज कहा कि वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलावों के मद्देनजर भारत के लिए अपने निर्यात के आधार में विविधता लाना और प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना विकास को बनाए रखने और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा. उन्होंने ये टिप्पणी नई दिल्ली में ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट के सातवें संस्करण का विमोचन करते हुए दी. यहां पर उन्होंने ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बदलती वैश्विक मांग के अनुरूप ढलना, मूल्यवर्धन बढ़ाना और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना महत्वपूर्ण बताया. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत के व्यापार प्रदर्शन में मिश्रित लेकिन लचीला रुझान दिखा. माल निर्यात में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आयात में 7.9% की तेज गति से वृद्धि हुई है. यहां पर बहुत संक्षेप प्रतिक्रिया, यानी जो हमारा निर्यात आधार है उसमें विविधता लाना
जी सरकार के द्वारा काफी कोशिश हो रही है इसकी तरफ, क्योंकि यूएस का भी हमने देखा था कि जो चैलेंज आया था ड्यूटीज की तरफ हाई टैरिफ की वजह से, उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन जो है हम बोल रहे हैं उसमें विविधता लाना जो हमारी बास्केट है, देशों अलग अलग देशों की तरफ हम जाएं उसमें अलग अलग जो है जो चीजें बिकती हैं वहां निर्यात की जा सकती हैं वो देखें ताकि निर्यात में बढ़ोतरी की जा सके.
एंड दीपिका, व्हेन यू सिंग लाइक यू राइटली सेइंग दैट वी नीड टू डाइवर्सिफाई, बट विच आर दी सेक्टर्स विच आर यू नो वेयर इंडिया कैन डाइवर्सिफाई गिवन द प्रेजेंट पोलिटिकल जियो पोलिटिकल सिचुएशन दैट इज हैपनिंग?
सी वी हैव ऑलरेडी सीन यू नो अ वेरी sharp diversification which happened. If you remember, you know, when US imposed high tariffs, US we exported, like shrimp was a very large component. We have now diversified it to other countries. Now with this immediate challenge in West Asia, we are obviously looking at diversifying what was going to West Asia.
Yes.
So, you know, say rice is there, horticulture products are there. So where else can we send it? Because obviously distance is also an issue. So definitely I think the effort from the government side is to have a very balanced basket. You know, we shouldn't get caught in such a difficult situation wherein, you know, one market is sort of, there is an issue in one market. So immediately we should be able to move to other markets.
Right, let's move on to commodities. Global crude oil prices climbed about 5% today amid uncertainty around US-Iran talks. Brent crude was trading almost 4.8% up at $94.68 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 5.2% up at $88.25 per barrel when reports last came in. Deepshikha, very quick comment. Obviously, we are going to this volatility in global crude oil prices will definitely, you know, persist given the area where the conflict is happening. But so far, from India's point of view, right now, under $100 per barrel, manageable?
Yes, under $100 I think is manageable, but definitely it does put some bit of pressure because we've seen very low crude prices for a while.
From 70 odd.
Yeah, so we were beneficiaries of that you know, low price. And all commodities, you know, there's so many other chemicals, petrochemicals, linked inputs linked to crude oil.
Yes.
So it's not just crude oil prices.
Right.
It flows into other sectors as well. So very crucial time for, I think, all economies which are very heavily import dependent for their requirement of crude.
यहाँ पर बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे कि ये जो दैनिक आधार पर तेज परिवर्तन हो रहा मूल्य में वो किस रूप में हमें प्रभावित करता, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को?
हम मनोज जी बहुत हद तक आयात पर निर्भर हैं अपने क्रूड रिक्वायरमेंट के लिए, और क्रूड से जुड़े हुए बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो इनपुट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर, तो जब दाम बढ़ता है
तो
असर पड़ता ही है.
लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड एंड सिल्वर. इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वॉज ट्रेडिंग नियरली 0.6% डाउन एट 1,54,050 रुपीज पर 10 ग्राम्स, वाइल सिल्वर वॉज ट्रेडिंग ओवर 2.2% डाउन at 2,53,450 rupees per kilogram a short while ago.
MCX में जून अनुबंध वाला सोना 0.5% घटकर 1,53,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. मई अनुबंध वाली चांदी 1.7% से अधिक घाटे के साथ 2,52,758 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार समाचार तैयार किए जाने तक चल रही थी. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना
चाहते हैं. धन्यवाद मनोज जी. थैंक यू अनुभव.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन फ्लैट नोट. सेंसेक्स एड्स ओवर 20 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 24,365. इंडिया एंड साउथ कोरिया एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू $50 billion बाय 2030. बोथ नेशंस टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग AI, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. And global crude oil prices climb around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team for now. Goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
को खाना।